अगली सुबह आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। आयु अब तक उठी नहीं थी। आरव ने आयु को जगाया तो आयु ने देखा कि आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी जॉब छुड़ाकर आरव ऑफिस जा रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आया। आयु उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, कल शाम को कोई मुझे बोल रहा था कि मेरी प्रेगनेंसी के चक्कर में उन्होंने अपना सारा काम घर पर मैनेज कर लिया है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर पर रहूंगी तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। वो जानबूझकर ऐसा कह रही थी ताकि आरव उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए मान जाए। वहीं आयु की बात सुनकर आरव की फेस पर ईविल स्माइल थी जो आयु को कन्फ्यूज़ कर रही थी। आयु ने हैरानी से आरव की तरफ देखकर पूछा, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ पूछा है? देखो, मुझे तुम्हारे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें मुझे भी मेरा काम फिर से करने देना होगा। बोलकर आयु आरव से दूर जाने को हुई, तभी आरव ने उसे पकड़कर अपने और करीब खींच लिया। आरव ने आयु के नोज से अपना नोज टच करते हुए कहा, क्या लगता है मिसेस खुराना, ऐसी बातें करोगी तो मैं तुम्हें फिर से जॉब पर जाने दूंगा। ठीक है, मैं सारा काम घर से कर लूंगा और एक मिनट भी तुम्हारी आंखों से दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन सोच लो, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आयु आरव की बात का जवाब देती उससे पहले आरव ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे काफ़ी डीपली किस कर रहा था। एक लंबे किस के बाद आरव ने आयु को छोड़ा और फिर कहा, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने रहूँगा, बिल्कुल पास, तुम कहो तो तुम्हें पूरे दिन अपने गोद में बिठाकर और करीब रख सकता हूँ। आरव की बात सुनकर आयु के गाल लाल होने लगे। वो अपनी स्माइल कंट्रोल करके इधर उधर देखते हुए बोली, मैंने ऐसा भी करने को नहीं कहा है, तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं दादी के साथ रह लूँगी। बिल्कुल नहीं मिसेस खुराना, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम्हारी नाक में दम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी आरव खुराना नहीं, आरव ने भौंहें उठाकर कहा। आयु उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। आरव को घर पर रोककर उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। आयु आगे कुछ कहती उससे पहले आरव चेंज करने के लिए क्लोसेट एरिया में चला गया। आयु भी बाथरूम में चली गई। वो तैयार होकर बाहर आई तब तक आरव चेंज कर चुका था। उसने कैजुअल्स पहने थे। आयु ने उससे अलग पैंट्स और ऊपर लूज टॉप पहना था। उसे देखते ही आरव बोला, तुम्हें बोला था ना तुम्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, बाहर नहीं जा रही हो तुम, तो जाकर चेंज करो। आयु उसे मना करती उससे पहले आरव उसके पास आया और उसके बाल साइड करके उसका टॉप निकालने लगा। आयु समझ गई थी कि आरव ने उसे परेशान करने को कहा है, तो वो उसकी शुरुआत कर चुका था। आयु ने आरव को रोकते हुए बोली, प्लीज मत करो, मैं खुद से कर लूंगी, मुझे तुम्हारे सामने अजीब लग रहा है। बोलते हुए आयु दूसरी तरफ पलट गई। आयु आरव के सामने इतना असहज क्यों हो रही है वो उसका कारण समझ सकता था। उसने आयु को अपनी तरफ पलटा और फिर उसके पेट पर हाथ रखकर कहा, तो तुम्हें मेरे सामने एम्बैरेशमेंट फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है? इसमें इतना शाई फील करने की क्या बात है? अभी तो शुरुआत है, तुम्हारा बेबी बम्प और बढ़ने वाला है। बोलते हुए आरव आयु के पेट को गौर से देखने लगा। ट्विंस होने की वजह से उसका बम्प नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा ग्रो हो रहा था। आयु ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वो कुछ बोल नहीं रही थी तो आरव ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में देख सकता हूँ और तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा, तो प्लीज़ आगे से मेरे सामने ऐसे रिएक्ट मत करना, ये हमारे ही बच्चे हैं और मुझसे ज़्यादा तुम इन्हें इस दुनिया में लाने के लिए डेस्परेट हो रही हो। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर आरव आयु के लिए एक लूज़ फ्रॉक लेकर आया और उसे पहना दी। आरव ने आयु को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और उसके बालों में कोम कर रहा था। आरव ने आयु के बालों को पोनीटेल में बांधा और फिर उसे हक कर लिया। आरव ने आयु को सहलाते हुए कहा, आई प्रॉमिस, तुम्हारे पास बेस्ट मेटर्निटी कलेक्शन होगा, मैं आज ही डिज़ाइन करने लग जाऊंगा, फोटोशूट भी करवाएंगे, देखना हमारा कलेक्शन भी हिट होगा। आज से पहले मैंने मेटर्निटी कलेक्शन नहीं निकाला था, पर तुम्हारे लिए ये भी करने जा रहा हूँ। आरव आयु को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसे हर तरीके से अडोर कर रहा था। वो फिर आयु का हाथ पकड़कर उसे नीचे डाइनिंग टेबल पर लेकर आया। काफ़ी दिनों बाद आज पूरी फैमिली साथ में ब्रेकफास्ट कर रही थी। आयु को आरव के साथ देखकर गौरवी जी और कबीर भी खुश हुए। गौरवी जी ने कहा, तुम्हें ऊपर नीचे आने जाने में प्रॉब्लम होती होगी, या तो अपना रूम नीचे शिफ्ट कर लो या खाना ऊपर मंगवा लिया करो। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कबीर ने कहा, हाँ वैसे सर ने कहा तो था कि नीचे जो रूम बंद पड़ा है उसका इंटीरियर उनके हिसाब से सेट करवा दें, मैंने डिज़ाइनर से बात कर ली है, थोड़ी देर में वो पहुँच जाएगा। ऑफिस में जो भी मीटिंग्स अटेंड करनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाएगी, ऑफिस में मैं देख लूँगा। कबीर के बाद आरव बोला, मैंने तुम्हारे घर वालों से बात कर ली है और उन्हें कहा है कि उनमें से कोई ना कोई रोज़ तुमसे मिलने आता रहे ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो, सब इस बात को लेकर एग्री कर रहे थे। आयु को अच्छा फील करवाने के लिए सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे थे। आयु ने देखा कि सब उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे थे, वो थोड़ा इमोशनल फील करने लगी। तभी आरव ने उसे सहलाते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें इस टाइम में मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे होंगे, लेकिन इतनी छोटी बात पर भी रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे रोना आ रहा है, आप सब लोग मेरी इतनी केयर कर रहे हो, आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की, आयु बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली। आयु की बात सुनकर आरव ने उसे तिरछी निगाहों से घूरते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन मिसेस खुराना, आज से पहले क्या मैंने तुम्हारी केयर नहीं की? आरव जानबूझकर आयु को परेशान कर रहा था, इसलिए गौरवी जी ने उसके हाथ पर हल्के हाथ से मारते हुए कहा, उसे तंग मत करो, ऑलरेडी वो अपनी बॉडी में हो रहे चेंज से परेशान है, ऊपर से तुम भी परेशान करने पर आ गए। कबीर उन दोनों की तरफ हल्का मुस्कुराते हुए देख रहा था। पहले उसे शादी जैसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आरव और आयु को साथ में खुश देखकर अब उसे भी अपनी खुद की फैमिली बनानी थी युवानी के साथ। अचानक कबीर ने कहा, दादी मुझे शादी करनी है, आप युवानी के घर पर बात करने कब जाएंगी? जैसे ही कबीर के मुंह से शादी का नाम निकला, आरव और आयु हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। अगले ही पल आरव को समझ आ गया था कि कबीर ऐसा क्यों कह रहा है। उसने कबीर से कहा, कहीं तुम हम दोनों को देखकर तो शादी करने का नहीं सोच रहे हो? तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये हैप्पी फेज या थैंक यू बोलना, प्यार करना थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, ज्यादातर ये मुझसे झगड़ा करती रहती है, कभी कभी तो मैं भी सोचने लगता हूँ कि मैंने इससे शादी क्यों की। गौरवी जी ने आरव को घूरते हुए देखा और फिर कबीर से कहा, हम आज शाम ही चल रहे हैं, तुम युवानी को बता देना। चलो अब ब्रेकफास्ट हो गया है, तुम ऑफिस जाओ कबीर, आयु तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, आरव तुम घर से अपने काम देख रहे हो तो ऊपर के फ्लोर पर जाकर करना और आयु को परेशान मत करना। सबको अपना अपना काम बताने के बाद गौरवी जी अपने कमरे में चली गई, तो वहीं आरव थर्ड फ्लोर पर ऑफिस में जाते वक्त आयु को भी अपने साथ लेकर गया था। हालांकि गौरवी जी ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो उनसे छुपकर आयु को अपने साथ ले गया था।
आयु और आरव आज दोनों घर पर ही थे। आरव अपने घर के थर्ड फ्लोर पर बने ऑफिस में काम कर रहा था, तो आयु भी उसके साथ थी। काम करते हुए आरव साथ साथ में आयु का भी ख्याल रख रहा था। आयु भले ही आरव के साथ हो, लेकिन दिल ही दिल में उसे छवि सिंघानिया की चिंता सता रही थी। वो जानती थी कि आज उसकी रिपोर्ट आने वाली है और अयान ने भी आयु से आरव को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा था। दोपहर को आरव ने लंच उनके लिए ऊपर ही मंगवा लिया था। लंच करने के बाद आयु ने टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। छवि की रिपोर्ट्स लगभग 5 बजे के करीब आनी थी। आयु को चुप देखकर आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या सोच रही हो तुम, जो इतनी देर से खोई हुई लग रही हो? देखो, मेरे साथ रहकर किसी और के बारे में मत सोचना। आरव, मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे क्या? अचानक आयु ने पूछा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर पूछा, बोलो क्या चाहिए, हॉस्पिटल ज्वाइन करने के अलावा कुछ भी मांग सकती हो, आई प्रॉमिस मना नहीं करूंगा। एक बार फिर सोच लो आरव, तुमने प्रॉमिस किया है तो पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होगा। अपनी विश बताने से पहले आयु ने एक बार फिर पूछा, उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, बोल दिया ना मिसेस खुराना, हाँ कहा है तो कुछ भी मांग सकती हो, इतना पूछ रही हो मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। आयु जानती थी कि अगर वो रुक कर बोली तो आरव के सामने अटकने लगेगी, इसलिए उसने एक झटके में जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा, आज छवि सिंघानिया की रिपोर्ट आने वाली है, अयान चाहता है कि तुम हॉस्पिटल में रहो, कल रात वो फिर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। देखो, तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम्हारे पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है और तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे। जैसे ही आयु ने सब बताया, आरव उसकी तरफ सर्द निगाहों से देख रहा था। आयु को उसके गुस्से से डर लग रहा था, इसलिए वो इधर उधर देखने लगी। आरव ने आयु का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तकलीफ देने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेती हो ना तुम, अब बीच में वो कहां से आ गई? मैंने तुम्हें कहा था कि उसके बारे में बात भी नहीं करनी है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर तुम्हें उसकी परवाह क्यों हो रही है? आयु ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हें अपने गुस्से को थोड़े दिनों के लिए भूलना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है आरव, लेकिन मुझे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लग रहा है, आरव ने काफी रोडली जवाब दिया। मैंने सिंघानिया इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट मंगवाई थी, कंपनी बर्बाद होने के कगार पर है और वो अच्छे से जानती है कि सिर्फ मैं ही उसकी कंपनी को बर्बाद होने से रोक सकता हूँ। आज तक तो कभी उस औरत ने इमोशंस नहीं दिखाए, अचानक उसका प्यार जाग गया, बेट लगा लो मुझसे, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी और फिर तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कुछ पल सोचकर कहा, ठीक है तो फिर रिपोर्ट देखने चलते हैं ताकि कोई हेरा फेरी ना हो सके, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर वो सच में बीमार हुई तो तुम्हें उनके पास रहना होगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। बोलते हुए उसने प्रॉमिस लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने आयु को घूर कर देखा और फिर ना में सिर हिलाकर कहा, मैं तुमसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ, वो बीमार है तो उसकी कंपनी को कुछ नहीं करूंगा, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ठीक हो या ना हो, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। आरव को मनाना इतना आसान नहीं था, वो हॉस्पिटल जाने के लिए मान गया था, यही बात काफी थी। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कहा, चलो ठीक है फिर चलते हैं, उसकी रिपोर्ट कुछ देर में आने वाली ही होगी, हम चेंज करके तैयार होंगे और हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तब तक रिपोर्ट्स मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, आरव ने सिर हिलाकर कहा, मैंने जाने के लिए हाँ कही है, तुम्हें साथ ले जाने के लिए नहीं, चुपचाप यहीं पर बैठकर रेस्ट करो, मैं अपने आप देख लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे, प्लीज मान जाओ, तुम साथ रहोगे तो मेरी और अच्छे से केयर कर सकोगे, अकेले मेरा मन नहीं लगेगा, प्लीज मिस्टर खुराना मान जाओ। आयु बच्चों की तरह जिद करने लगी और उसने आरव के दोनों हाथ पकड़ लिए। अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ, आरव ने आईज रोल करके कहा। आयू की जिद के आगे आरव को मानना ही पड़ा और वो उसे लेकर अपने फ्लोर पर आ गया था। कुछ ही देर में वो दोनों तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। छवि सिंघानिया की रिपोर्ट्स आने वाली थी और आयान हॉस्पिटल में अकेला था, ये सोचकर साक्षी उसके पास चली गई। उसके पीछे से मंथन और रायशा घर पर थे। रायशा रात को लेट आई थी, इस वजह से वो देर तक सो रही थी। दोपहर के लगभग 3 बजे के करीब उसकी नींद टूटी तो वो बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा मंथन अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। रायशा को इतना लेट उठते देख मंथन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। ये उसके लिए नई बात नहीं थी। लेट शूट होने पर अनु भी इस तरह देरी से ही उठती थी। वही रात को मंथन और अनुष्का के रिश्ते का पता चलने के बाद रायशा को उससे नजरें मिलाते शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो वापस कमरे के अंदर जाने लगी तो मंथन ने तेज आवाज में कहा, मुझसे नजरें चुरा रही हो, मतलब साक्षी दी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। डोंट फील गिल्टी फॉर अस, आगे से गलती से भी उसके खिलाफ एक शब्द भी मेरे सामने मत बोलना। मंथन अभी भी रायशा से काफी रूखे तरीके से बात कर रहा था। उसे लगा रायशा उसकी बात सुनकर नाराज होकर वहां से चली जाएगी, पर आज रायशा को बुरा नहीं लगा। वहां से जाने के बजाय रायशा धीमे कदमों से चलकर मंथन के पास गई और धीरे से उसे सॉरी कहा। मंथन ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो सच में रायशा के चेहरे पर पछतावे के भाव थे। आज का चैप्टर आरव और आयु के नाम। हाँ, सीन कम है इनके आजकल, क्योंकि कहानी में लीप होगा तो उसके लिए बेस तैयार करना जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर। शो योर लव एंड सपोर्ट।